भाग दो, युवा हरदेव। पाक सोच, मजबूत इरादा, खूब निभाई हर मर्यादा। युवक मगर युवकों से न्यारा, सबका साथी और सहारा। हरदेव सिंह जी ने जब युवावस्था में प्रवेश किया तो नैतिक शिक्षाओं और गुरुमत भरे संस्कारों के कारण आपके जीवन की दिशा तीव्र गति से आध्यात्मिकता की ओर बढ़ती दिखाई दी। सामान्य युवकों की अपेक्षा आपके युवा हृदय में हर पल मानव प्रेम, देश प्रेम तथा विश्व प्रेम की भावनाएं उमड़ती दिखाई दी। सेवा सत्कार का जज्बा हर वक्त हिलोरे मारता दिखाई देने लगा। आपके उज्जवल चरित्र व पावन विचारों वाले ऊंचे व्यक्तित्व को देखकर सभी युवा साथी भी सहज ही आपका दिल से सम्मान करने लगे और देखते ही देखते आप युवा वर्ग के लिए एक उच्च आदर्श बनते गए। खुद सेवा करके दूसरों को सुख पहुंचाने वाला भाव आपके भीतर हमेशा प्रबल रहा। एक बार राजपुरा से पटियाला बस में जाते समय आपने देखा कि एक बुजुर्ग के लिए कोई सीट खाली नहीं है। आपने उस बुजुर्ग सज्जन को अपनी सीट देकर स्वयं पूरा सफर दरवाजे के पास खड़े होकर तय किया। हर कर्म में बड़ी सरलता और सहजता से अपने आप को साधारण रूप में पेश करना आपके असाधारण व्यक्तित्व और महानता को दर्शाता रहा। दयालु हृदय होने के कारण आपसे किसी का भी दुख देखा नहीं जाता था। अभी आपकी छोटी बहन जगजीत जी की शादी तय ही हुई थी कि आपको पता चला कि बहन जी की ससुराल में किसी को अचानक रक्त की आवश्यकता है। खामोश सेवादार हरदेव जी ने एक क्षण भी नहीं कमाया और बिना किसी को बताए हॉस्पिटल में रक्त देने पहुंच गए। हरदेव जी रिश्तों के दायरों से ऊपर उठकर दूसरों का दुख दर्द कम करने की भरपूर कोशिश करते थे। यूं तो सदगुरु के वचन सभी सुनते हैं, परंतु उनको कर्म में ढालने वाले कुछ विशेष ही होते हैं। एक बार सदगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी कुछ महापुरुषों के साथ मसूरी में कैमल बैक रोड से गुजर रहे थे। बाबा जी ने बीच रास्ते में पड़ा एक बड़ा सा पत्थर देखकर सहज भाव से कहा, ये पत्थर बीच रास्ते से हटाकर किनारे कर देना चाहिए ताकि किसी आने जाने वाले को ठोकर ना लगे। हालांकि उनका वचन तो सबने सुना, परंतु सदगुरु के साथ साथ चलने की लालसा में सभी गुरसिख आगे बढ़ गए। जब संतों का ये काफिला काफी आगे पहुंच गया तो किसी महात्मा ने देखा कि हरदेव जी उनके साथ नहीं हैं। जब कुछ संत उन्हें ढूंढने वापस आए तो उन्होंने देखा कि हरदेव जी उस बड़े पत्थर को अकेले ही धकेल कर किनारे की ओर ले जा रहे हैं। आपने गुरु के साथ चलने की बजाय उनके वचन को मानना अधिक महत्वपूर्ण समझा। मन में सदगुरु के प्रति असीम आदर सत्कार का भाव होने के कारण आप बाबा जी के सामने बहुत ही कम बोलते थे और हर बात को बड़ी मर्यादा और नपे तुले शब्दों में ही कहते थे। आपकी दृढ़ आस्था थी कि गुरु के सम्मुख गुरसिख को अपनी सीमा व मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। किशोर अवस्था से ही हरदेव जी सत्संग में फोटोग्राफी की सेवा करते थे। देश हो या विदेश, आप जहां भी सदगुरु के साथ जाते, कैमरा आपके साथ ही होता और आप गुरु एवं गुरसिख के मिलाप के सुनहरे पलों को कैमरे में कैद करके मधुर यादों के रूप में समेट लेते। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते आप वार्षिक संत समागमों तथा अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर वीडियोग्राफी की सेवा भी करने लगे। आप सेवा में इतने मग्न हो जाते कि आपको अपनी भूख प्यास का भी ध्यान नहीं रहता था। जब राजमाता जी बाबा गुरुबचन सिंह जी के साथ पहली विदेश यात्रा से वापस आई तो उन्होंने देखा कि हरदेव जी को संगत की वीडियो बनाते बनाते सुबह से शाम हो गई। एक माँ होने के नाते राजमाता जी ने बाबा गुरबचन सिंह जी से कहा, देखो सेठ जी सुबह से बिना खाए पिए ही सेवा में लीन हैं। बाबा गुरबचन सिंह जी ने सहज भाव से आशीर्वाद देते हुए कहा, कोई बात नहीं, सेवा की खुशी में जवानों को कुछ नहीं होता। अक्सर होता भी यही था कि जब तक सत्संग का समापन नहीं हो जाता तब तक हरदेव जी अन्य सब कुछ भूलकर सिर्फ अपनी सेवाएं निभाते रहते। आपको पिता से अधिक सदगुरु रूप में बाबा गुरबचन सिंह जी की सेवा व सत्कार करके खुशी मिलती थी। आप एक सेवादार की तरह अक्सर बाबा जी की गाड़ी चलाने की भी सेवा करने लगे। राजमाता जी के शब्दों में, जब मैं और बाबा गुरबचन सिंह जी किसी संत के आग्रह पर उनके घर जाते तो सेठ जी बाहर ड्राइवर की सीट पर ही रहते। कोई अंदर बुलाता तो ये कह देते कि दास ड्यूटी पर है, इसलिए गाड़ी के पास ही रहना है। ये महापुरुषों द्वारा दिया गया जलपान भी गाड़ी में ही ग्रहण करते। आप स्वयं कर्म करके यही सिखाते रहे कि सेवादार का केवल यही कर्तव्य होता है कि वो अपने सद्गुरु की सेवा पूर्ण समर्पित भाव से करे। सेवा दल सदस्यता एवं संचालन। हरदेव जी सन 1971 में संत निरंकारी सेवा दल के सदस्य बने। आपका सेवा दल की वर्दी पहनकर मैदानों में सेवा करना हजारों नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। सेवा भावना से ओतप्रोत हरदेव जी स्वयं अपने हाथों से सेवा करके प्रसन्न होते थे। धूप हो या बरसात, आप अपनी सेवा का स्थान कभी नहीं छोड़ते थे। संगत की पूरी व्यवस्था संभालते और सबके जाने के बाद पूरे मैदान का चक्कर लगाकर देखते कि कहीं किसी संत का कोई सामान तो नहीं छूट गया या किसी कारण से किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही। जब सत्संग का समापन हो जाता तो आप अन्य सेवादारों के साथ मिलकर लंगर ग्रहण करते। आपकी धारणा थी कि सेवा ऐसी हो जिससे दूसरों को आराम और प्रसन्नता मिले। आप हमेशा भाई बहनों सहित सेवा दल के अधिकारियों के पास चले जाते और पूछते कि आप जी ने हमारी सेवा कहाँ लगाई है, आदेश दीजिए। आपको हर समय बस यही धुन लगी रहती थी कि सदगुरु के हर वचन पर पूर्ण समर्पण के पुष्प चढ़ाए जा सकें। इसकी एक मिसाल उस समय फिर से देखने को मिली जब आप महाराष्ट्र समागम के लिए मुंबई गए। उन दिनों मुंबई भवन में केवल दो ही फोन होते थे, एक भवन के कार्यालय में जो कि बहुत व्यस्त रहता था और दूसरा सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के कमरे में। आपने बाबा जी के कमरे में जाकर फोन करना उचित नहीं समझा और कार्यालय में फोन करने चले गए। वहां बैठे हुए महात्मा आपसे परिचित नहीं थे। उन्होंने कहा, महापुरुषों आप फोन भवन के बाहर एसटीडी बूथ से करें, यदि आप चाहते तो अपना परिचय देकर वहीं से फोन कर सकते थे, लेकिन आपने उनके वचन को सदगुरु का वचन मानते हुए बाहर जाकर पब्लिक बूथ से ही फोन किया। आपको सेवा में मग्न देखकर कोई ये अनुमान ही नहीं लगा पाता था कि आप सदगुरु के सुपुत्र हैं। एक बार जब लंगर की सेवा के बाद आपने देखा कि कुछ बर्तन वहीं रह गए हैं तो आपने बिना किसी को कहे सभी बर्तन एक थैली में भरे और उन्हें वापस यथास्थान पहुंचा दिया। आपकी एक आवाज पर अनेक सेवादार उस कार्य को पूरा कर सकते थे, किंतु आपने बिना किसी को आवाज दिए खुद ही उस सेवा को निभा दिया। अनन्य सेवादार वाला आपका रूप अत्यंत प्रेरणादायक था। सन 1972 में दिल्ली के रामलीला मैदान में रजत जयंती संत समागम की पूर्व संध्या की बात है। कैंटीन में सेवा करते हुए ड्यूटी पर तैनात सभी सेवादार सेवा करते करते देर रात को थक कर वहीं बिछे कालीन पर सो गए। जब सुबह 5 बजे उनकी आंखें खुली तो देखा कि हरदेव जी अब भी सेवा कर रहे हैं। उन संतों ने पूछा, आप जी सोए नहीं? तो आपने सहज भाव से उत्तर दिया, आज दोपहर से तो समागम शुरू हो जाएगा और कैंटीन खुलने से पहले बहुत से काम बाकी थे, इसीलिए दास नहीं सोया। अगले दिन समागम में शोभा यात्रा के दौरान भी आपने लगातार अपनी सेवाएं उसी प्रकार जारी रखी। हरदेव जी का यूं बिना थके दिन रात सेवा करना सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। सेवा के प्रति आपकी लगन को देखकर केंद्रीय सेवादल अधिकारियों ने आपको संत निरंकारी कॉलोनी के सेवादल के संचालक का कार्यभार सौंप दिया, जिसे आपने हमेशा अधिकारियों के आदेशों का पालन करते हुए पूरी तन्मयता से निभाया। आप स्वयं तो अधिकारियों से आदेश लेते, परंतु सेवादल के संचालक होकर भी सेवादल सदस्यों को आदेश देने के बजाय बस यही कहते कि संतों आओ, ये सेवा करनी है। हरदेव जी स्वयं को सेवादारों के बीच यूं शामिल कर लेते कि पूरी यूनिट ही आपके हर छोटे बड़े संकेत को समझते हुए उस सेवा में जुट जाती थी। आपको इस तरह सेवा करते देख साथी सेवादारों में भी सेवा करने का एक नया जज्बा व जोश भर जाता था। एक बार दिल्ली में सितंबर के महीने में यमुना नदी में बाढ़ आने से निरंकारी कॉलोनी में 5-6 फुट पानी भर गया व बिजली कट जाने से आसपास चारों तरफ अंधेरा छा गया। हरदेव जी ने सबकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए किसी तरह व्यवस्था करके भवन की सबसे ऊंची मंजिल पर रोशनी के लिए बड़ी बड़ी लाइटें लगा दी। बाबा गुरबचन सिंह जी के निर्देशानुसार आप अन्य सेवादारों के साथ मिलकर पूरे क्षेत्र में कई दिनों तक पानी से भरे रास्तों को कुछ खाली ड्रमों की नाव बनाकर पार करते हुए घर घर जाकर भोजन पहुंचाते रहे। आपकी ऐसी समर्पित सेवा भावना को देखकर यही प्रतीत होता मानो निरंकार प्रभु हरदेव जी को आने वाले युग में मानवता की बागडोर संभालने के लिए तैयार कर रहा हो। आप मानवता के प्रति अपने हृदय में बहते हुए सेवा के सैलाब को अक्सर संगतों में ये कविता पढ़कर प्रकट करते। नौजवानों मिशन देव, सेवा च जीवन ला देव, सेवा ही साडी जिंद है, सेवा ही साडी जान है। निरंकारी यूथ फोरम। बाबा गुरबचन सिंह जी ने नौजवानों को सही व आदर्श दिशा देने के लिए निरंकारी यूथ फोरम का गठन किया। इस दिशा में हरदेव जी का अथक प्रयास देखकर बाबा गुरबचन सिंह जी ने निरंकारी यूथ फोरम की मुख्य जिम्मेदारी आपको सौंप दी। बाबा गुरबचन सिंह जी ने सन 1973 में दूसरी मसूरी कॉन्फ्रेंस में युवाओं के लिए इन सिद्धांतों की रूपरेखा दी। नौजवान नशा मुक्त समाज के निर्माण में योगदान दें, सादा शादियों को महत्व दें, मिशन के साहित्य को स्वयं भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने की प्रेरणा दें, मिशन के इतिहास एवं दर्शन को प्रदर्शनी द्वारा प्रस्तुत करें, अपने बुजुर्गों का सत्कार करते हुए तथा उनके अनुभवों का लाभ लेकर मिशन के प्रचार में सक्रिय रूप में योगदान दें। आपने इन सिद्धांतों को अपनाने और नौजवानों तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़कर सदगुरु से आशीर्वाद लिया। इस फोरम को गति प्रदान करने के लिए 27 जुलाई सन 1975 को प्रथम ऑल इंडिया यूथ कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित की गई। सभी शहरों के युवा प्रतिनिधि इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। निरंकारी यूथ फोरम की रहनुमाई स्वयं बाबा गुरबचन सिंह जी एवं निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी ने की। हरदेव सिंह जी ने सभी नौजवानों की ओर से सदगुरु के चरणों में एक प्रार्थना पत्र समर्पित किया, जो कुछ इस प्रकार था। आज दिनांक 27 जुलाई सन 1975 को हम सब निरंकारी युवक व युवतियां यहां आपके पवित्र चरणों में पहली बार इस प्रकार एकत्रित हुए हैं और सदा एक साथ मिलकर सेवा करने का आशीर्वाद लेने आए हैं। हमें दातार की कृपा से समझ में आ चुका है कि आपके द्वारा बनाई गई रूपरेखा हमारे आने वाले भविष्य व मानव समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है। आप हमें आशीर्वाद दें कि हम अपने मिशन के पुरातन एवं अनुभवी महापुरुषों के अनुभवों का लाभ उठाते हुए और उन पर आचरण करते हुए भावी समाज को स्वस्थ वातावरण दें एवं देश के अच्छे नागरिक बन सकें तथा आपके द्वारा मानव कल्याण हेतु चलाए जा रहे निरंकारी मिशन को विश्व के हर कोने में पहुंचाने में सहायक हों। हे भविष्य निर्माता, हमारी आपके चरणों में यही विनय पूर्वक प्रार्थना है कि आप हमें शक्ति दें कि हम आपके वचनों पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर सकें, ताकि आप आध्यात्मिक जागृति द्वारा मानव एकता लाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें हम आपके सहयोगी बन सकें। इस कॉन्फ्रेंस में बाबा गुरुबचन सिंह जी ने आशीर्वाद देते हुए फरमाया, हम बूढ़े तो हो सकते हैं लेकिन उत्साह कभी बूढ़ा नहीं होता, ये जीवन पर्यंत जवान रहता है। मेरी कामना है कि सभी नवयुवक सही मार्ग पर चलते हुए मानव कल्याण में सहयोगी बने। आपने नवयुवकों में सकारात्मक कार्यों की ओर अपनी ऊर्जा लगाने के लिए उत्साह भरा। स्थान स्थान पर आयोजित गोष्ठियों में आपने तीन बातों पर विशेष बल दिया, संयमी जीवन, प्रेम पूर्ण सेवा भावना और अनावश्यक व्यय तथा नशे से दूर रहना। हरदेव जी ने अपने नौजवान साथियों के सहयोग से मिशन के दर्शन और इतिहास पर केंद्रित निरंकारी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। सन 1975 से लेकर आज तक ये प्रदर्शनी वार्षिक व प्रांतीय समागमों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। निरंकारी यूथ फोरम के सद प्रयासों से जहां आपने युवाओं की सोच को सही दिशा व गति प्रदान की, वहीं मिशन के आध्यात्मिक साहित्य को भी असंख्य पाठकों तक पहुंचाया। हरदेव जी ने सदगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी के हर आदेश को अपने मन वचन कर्म से न केवल माना बल्कि उसे रचनात्मकता भी प्रदान की। आपका विवाह श्री गुरुमुख सिंह आनंद और श्रीमती मदन कौर जी की सुंदर और सुशील कन्या सविंदर कौर जी के साथ होना निश्चित हुआ। हालांकि सविंदर जी का जन्म माता अमृत कौर एवं पिता श्री मनमोहन सिंह जी के घर हुआ था, लेकिन गुरुमुख सिंह जी और मदन कौर जी ने उन्हें गोद ले लिया था। इस प्रकार सविंदर जी का जन्म एवं बचपन गुरुमत से रंगे हुए दो परिवारों से जुड़ा हुआ था। गुरु मर्यादा, सेवा एवं भक्ति के संस्कार उनको बचपन से ही मिले। सविंदर जी अत्यंत मेधावी, प्रतिभाशाली और करुण हृदय थीं। उन्हें देखकर सब कह उठे कि हरदेव जी और सविंदर जी की जोड़ी कितनी प्यारी और उत्तम है। 14 नवंबर सन 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित वार्षिक संत समागम की पूर्व संध्या पर हरदेव सविंदर जी के शुभ विवाह के अवसर पर हजारों की संख्या में संत जन उन ऐतिहासिक पलों का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे। सभी को ये दिव्य नजारा दिखाई दे सके इसके लिए एक ऊंचा स्टेज बनाया गया था, जिस पर वर वधु के रूप में सुशोभित ये दिव्य जोड़ी सदगुरु के आशीर्वाद और सभी भक्तों की शुभकामनाओं से अपना दामन भर रही थी। गुरु यश गाते और जय घोष करते हुए महात्माओं के दिव्य स्वरों से पूरा वातावरण गूंज रहा था। हर मुखड़े पर हर्ष की लहर तथा हर जुबां पर इस नूरानी जोड़ी के सुंदर गृहस्थ जीवन के लिए दुआएं थीं। संत निरंकारी मंडल के तत्कालीन प्रधान श्री लाभ सिंह जी ने वर वधु के गले में फूलों का सांझा हार डाला, जो निरंकारी शादी का प्रतीक होने के साथ साथ पति पत्नी को जीवन भर कदम से कदम मिलाकर चलने की प्रेरणा भी देता है। इसके पश्चात निरंकारी लावें पढ़ी गईं। इस प्रकार सदगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज, ममतामयी निरंकारी राजमाता जी तथा साध संगत की पावन उपस्थिति में ये शुभ विवाह संपन्न हुआ। सादा शादियों का जो आदेश बाबा गुरुबचन सिंह जी ने सन 1973 की मसूरी कॉन्फ्रेंस में दिया था, हरदेव जी का विवाह उसका जीता जागता प्रमाण बन गया, जहां विवाह समारोह का भोजन भी गुरु का लंगर ही था। अंत में वर वधु को भरपूर आशीर्वाद देते हुए बाबा जी और राजमाता जी ने साध संगत से जो कामना की वो सदियों तक एक मिसाल बनी रहेगी। राजमाता जी ने फरमाया, साध संगत जी, अभी आपने खुशियों भरा समय देखा है। वाकई जिन बच्चों की आप खुशी मना रहे हैं ये आपके ही बच्चे हैं। ये हर भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के सत्कार में जुटे रहें तथा आप संतों के भी गुण गाते रहें, ये सत्य की आवाज भी संसार को देते रहें। आप सारी साध संगत मिलकर ये आशीर्वाद दें कि ये बच्चे फलें फूलें और साध संगत व बाबा जी इन्हें जैसे चलाएं वैसे ही चलें। यही साध संगत के दर से मांगना है, क्योंकि साध संगत कामधेनु होती है। आप सब मिलकर ये आशीर्वाद दें कि ये बच्चे आपके सेवादार बनकर रहें। दिव्य शादी के इस अवसर पर सतगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज ने फरमाया, साध संगत जी, आज आप सभी महापुरुष इस सांझी खुशी में एकत्रित हुए हैं। दूर दूर से महापुरुष आए हुए हैं, सबके चेहरे पर दास खुशी देख रहा है और सब इस खुशी में पूरी तरह शरीक नजर आ रहे हैं। दास अभी साध संगत से मांग करता है कि बच्चों को साध संगत का आशीर्वाद प्राप्त हो। आप जैसी चाहना करेंगे, जो भी सुख बच्चों को देना चाहेंगे, आपकी उस आवाज से वो सारे सुख इन बच्चों को प्राप्त होंगे। ये आपके दास बने रहें, आपके सेवक बने रहें, बस ऐसी ही चाहना है, यही शुभकामना है। कभी भी सांसारिक बहलावे, कोई भी माया या अन्य किसी किस्म की वडियाइयां इनके मन पर हावी ना हो सकें। ये हमेशा आपके चरणों के दास बने रहें, क्योंकि दास भावना से ही ये लाभ मिल सकते हैं। दास फिर से साध संगत के चरणों से यही मांग मांगता है कि इन बच्चों को सांसारिक जीवन में भी सुख और लाभ प्राप्त हो और इन्हें परमार्थ में भी आगे बढ़ने की ताकत बख्शें। इस प्रकार संतों से भरपूर आशीर्वाद लेकर इस जोड़ी ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। दिसंबर सन 1975 में ये नवयुगल बाबा गुरबचन सिंह जी एवं राजमाता जी के साथ एक महीने की देश विदेश की कल्याण यात्राओं पर निकला। इन यात्राओं के दौरान आप दोनों को ही एक सेवादार दंपत्ति के रूप में सदगुरु की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सेठ हरदेव जी व सविंदर जी दोनों ने मिलकर जीवन का प्रत्येक पल मानव कल्याण को समर्पित करते हुए सेवा एवं भक्ति का सुंदर आदर्श स्थापित किया। निरंकार प्रभु की कृपा से हरदेव जी और सविंदर जी के आंगन में सन 1977 में समता जी, 1979 में रेणुका जी और सन 1985 में सुदीक्षा जी ने जन्म लिया।